नमस्कार भारत, 9 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन। जीका वायरस से निपटने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को आर्थिक मदद की जरूरत। मुंबई पर चरमपंथी हमले के अभियुक्त हेडली की गवाही आज भी जारी रहेगी।
पूरी अभी तक कहानी डेविड हेडली से मैंने उगलाई नहीं है कि साजिश में किन लोगों ने, लश्कर के लोग, आईएसआई के लोग और पाकिस्तान में क्या चल रहा था, इसके बारे में जरूर हम उससे पूछताछ करेंगे।
सुनिए छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जमीनी सच्चाई।
मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है उनकी मजदूरी का, एक मोहभंग की स्थिति श्रमिकों में बन गई है।
भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला आज। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने काठमांडू के महाराजगंज स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। सीरियाई सरकारी सैन्य बलों के एलेप्पो पर हमले जारी हैं। इसी बीच तुर्की ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता युद्ध से बचकर भाग रहे लोगों को सीरिया के भीतर ही मदद पहुंचाना है। उप प्रधानमंत्री नुमान कुर्तुलमुस ने बताया कि इस वक्त 77,000 सीरियाई नागरिकों को सीमा के नज़दीक कैंपों में मदद पहुंचाई जा रही है। तुर्की की यात्रा पर आई जर्मन चांसलर अंगेला मेयर्कल ने कहा है कि वे एलेप्पो के नागरिक इलाकों पर रूसी हवाई हमलों से हो रहे दुख से भयभीत हैं। तुर्की के उप प्रधानमंत्री नुमान कुर्तुलमुस ने बताया,
यकिन दनम्द बु बेल्गेलर्द ओलाबिलेजेक एन कोतु सेनारियोदा
नजदीकी भविष्य में इस क्षेत्र के लिए सबसे खराब स्थिति में करीब 6,00,000 शरणार्थी तुर्की की सीमा पर इकट्ठा हो सकते हैं। फिलहाल तुर्की सीमा पर संचालित राहत कैंपों में करीब 77,000 लोग हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान हमने अरब और तुर्क मूल के 5,600 सीरियाई नागरिकों को तुर्की में शरण दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सरकार की हिरासत में लिए गए लोग बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। इसे विद्रोहियों के समर्थकों को खत्म करने की राज्य प्रायोजित नीति और मानवता के खिलाफ अपराध माना जा रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक विद्रोहियों की मदद करने के आरोपों में किसी भी वक्त 10,000 नागरिक सरकार की हिरासत में रखे जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोगों की हत्या यातना देकर और पीट पीट कर की जा रही है, जबकि अन्य भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में विद्रोहियों पर भी कब्जे में लिए गए सीरियाई सैनिकों की हत्याएं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वह जीका वायरस से निपटने के लिए अमरीकी कांग्रेस से $1.8 अरब की आपात आर्थिक मदद मांगेंगे। मच्छरों से संक्रमित होने वाला जीका वायरस अमरीकी महाद्वीपों में तेजी से फैल रहा है। अभी इस वायरस का कोई टीका या निदान मौजूद नहीं है। सियाचिन में 6 दिन पहले हिमस्खलन में दबे भारतीय सेना के एक जवान को जीवित मिले हैं। लांस नायक हनुमंथप्पा करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर 8 मीटर बर्फ के नीचे दबे थे। उनके साथ दबे बाकी 9 सैनिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना ने कहा है कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें आज बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा टैक्स चोरी करने के लिए नियुक्त किए गए एक पूर्व फ्रांसीसी मंत्री पर टैक्स धोखाधड़ी का मुकदमा शुरू हुआ है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत नेपाल से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले काठमांडू में मौजूद बीबीसी नेपाली की सहयोगी गनी अंसारी से बात की।
कोइराला का अपना ही निवास काठमांडू के महाराजगंज स्थित रात 12:50 में उनका निधन हुआ। ये बात उनके निजी डॉक्टर करबीर योगी ने बीबीसी को बताया और मौत की वजह निमोनिया बताया जा रहा है। इससे पहले वो कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थे, लेकिन उससे पूरी तरह सेहतमंद हो चुके थे। और डॉक्टर करबीर योगी ने यह भी बताया कि पिछले 4 रोज से बुखार था उनको, बाकी और कोई समस्या नहीं थी उनके स्वास्थ्य में।
नेपाल की राजनीति में सुशील कुमार कोइराला का क्या योगदान है, उन्हें किस तरह से याद किया जाएगा?
देखिए वो गैर शादीशुदा थे, उन्हें संत नेता के रूप में देखा जाता है नेपाल पॉलिटिक्स में, और खास करके पिछले समय जब संविधान सभा संविधान नहीं बना पा रहा था उस वक्त भी इन्होंने बहुत सारी पार्टियों को सहमति में लाने की बहुत सारी कोशिशें की थी, इसलिए नेपाल पॉलिटिक्स में उन्हें एक स्वच्छ सभी और संत नेता के रूप में ही देखा जाए।
ये थे बीबीसी नेपाली के सहयोगी गनी अंसारी। सुशील कोइराला को फरवरी 2014 में नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया था। वे नेपाली कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष भी थे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगली खबर अमेरिका से। जीका वायरस का प्रसार रोकने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिकी कांग्रेस से लगभग 2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद चाहते हैं। जीका वायरस लातिन अमेरिकी देशों में तेजी से पांव पसार रहा है और खुद अमेरिका भी इस वायरस के संक्रमण से बच नहीं पाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जीका वायरस के प्रसार को पहले ही आपात स्थिति बता चुका है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जीका वायरस से पैदा हुए स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए कांग्रेस से करीब 125 अरब रुपए मांगेंगे। मच्छरों से संक्रमित होने वाला ये वायरस अमरीकी महाद्वीपों में बेहद तेजी से फैल रहा है। इसे बच्चों के छोटे दिमाग के साथ पैदा होने वाली बीमारी माइक्रोसेफेली से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्राजील में जीका वायरस के संक्रमण के मामलों के साथ साथ माइक्रोसेफेली के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिससे इस वायरस को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमरीकी सरकार इस पैसे का इस्तेमाल संक्रमण करने वाले मच्छरों को रोकने और वायरस के लिए टीका बनाने के प्रयासों में करेगी। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, अच्छी बात ये है कि ये इबोला जैसा संक्रमण नहीं है, ये लोगों की जान नहीं लेता है। बहुत से लोग जो इससे प्रभावित होते हैं उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें जीका वायरस है। अभी जो जानकारियां हमारे पास हैं उनके मुताबिक इससे गर्भवती महिलाओं और गर्भधारण करने के बारे में सोच रही महिलाओं के लिए खतरा ज्यादा है। जीका वायरस से संक्रमित 5 में से 1 लोगों में ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की उपनिदेशक डॉक्टर एने शुचे ने वायरस के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया, जीका वायरस फैलाने वाला मच्छर दिन में काटता है, ये घर के बाहर और अंदर दोनों जगह रहता है और इस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल है। जिन इलाकों में ये वायरस फैल रहा है या फैल सकता है, हम वहाँ बेहद तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हम गर्भ संबंधित जटिलताओं से निपट सकें। अभी जीका का कोई टीका या निदान मौजूद नहीं है, लेकिन टीका विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अगले कुछ सालों में व्यापक स्तर पर टीका उपलब्ध होने की संभावना कम ही है। 1947 में युगांडा में सबसे पहले पाए गए इस वायरस को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ब्राजील और अन्य लातिन अमरीकी देशों समेत 20 देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
जीका वायरस से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को आर्थिक मदद की जरूरत, बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
अमेरिकी जेल में बंद मुंबई चरमपंथी हमले के अभियुक्त डेविड हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की अदालत में कल शुरू हुई गवाही आज भी जारी रहेगी। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम का दावा है कि अभी कई तथ्यों का उजागर होना बाकी है। पूरी रिपोर्ट सुनिए अशोक कुमार से।
अपनी तरह की इस अनूठी गवाही में डेविड कोलमैन हेडली आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराएगा। हेडली लश्करे तैयबा से जुड़ा है और वो 2008 में मुंबई में हुए हमलों के मामले में सरकारी गवाह के तौर पर मुंबई की एक अदालत में बयान दर्ज करा रहा है। पहले दिन की गवाही के दौरान हेडली ने कई जानकारियां दी जिन्हें सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बेहद अहम बताया। निकम ने कहा कि अभी हेडली से कई और जानकारियां हासिल की जानी हैं।
देखिए अभी तक तो मैंने 1/4 तक आया हूँ, पूरी अभी तक कहानी डेविड हेडली से मैंने उगलाई नहीं है। और ये भी मुश्किल नहीं है मुझे लिए कि साजिश में किन लोगों ने, लश्कर के लोग, आईएसआई के लोग और पाकिस्तान में क्या चल रहा था, इसके बारे में जरूर हम उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन ये ट्रायल फेयर एंड फ्री ये होगी।
मुंबई हमले के मामले में अमेरिका की एक अदालत हेडली को साल 2013 में 35 साल की सजा सुना चुकी है और वो फिलहाल जेल में है। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमरीकी नागरिक है। उसका एक नाम दाऊद सैयद गिलानी भी है। साल 2006 में उसने अपना नाम बदला। हेडली ने अपनी गवाही के दौरान बताया कि उसने सितंबर 2006, फरवरी और सितंबर 2007 और अप्रैल जुलाई 2008 में भारत के 5 दौरे किए थे। हर दौरे में उसने अलग अलग जगहों के वीडियो भी बनाए थे। सरकारी वकील निकम के मुताबिक उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क को लेकर भी जानकारी दी।
हमने ये भी पूछा कि आईएसआई का किन लोगों से उसका वास्ता पड़ा, तो उसने बताया कि मेजर इकबाल ने उसको ट्रेनिंग दी थी और एलएटी के कुछ ट्रेनर्स के नाम भी आज उसने बताया। और ऐसी कुछ जानकारी हम उसके पास से कल लेने की कोशिश करेंगे।
निकम के मुताबिक हेडली की गवाही के जरिए 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमले की साजिश रचने वालों को सामने लाने की कोशिश है। आज दूसरे दिन की गवाही में उससे कुछ और जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उधर वरिष्ठ वकील माजिद मेमन का कहना है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें सावधानी दिखाने की जरूरत है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। जानेंगे उनसे डेविड हेडली की गवाही का क्या महत्व है और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए। लेकिन पहले बात पाकिस्तान की। मुंबई हमलों के अभियुक्त डेविड हेडली की गवाही और उसमें सामने आ रहे तथ्यों को पाकिस्तान में किस तरह देखा सुना समझा जा रहा है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से बात की।
कोई खास यहाँ पाकिस्तान में तो जो मीडिया है उसने कोई उसको तवज्जो नहीं दी है और ना ही सरकार की तरफ से इस पर कोई अभी तक बयान सामने आया है। लेकिन माजी में जब भी डेविड हेडली और पाकिस्तान का नाम आता रहा है तो पाकिस्तान इसकी बार बार तरदीद करता रहा है कि ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक था, और ये कि वो ये आरोप भी इंडिया पर लगाते रहते हैं कि ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही है उसका ही ये एक हिस्सा है। लेकिन अभी ताज़ा सरकार की तरफ से इस अदालती बयान पर कोई रद्द अमल या पाकिस्तान की सेना की तरफ से सामने नहीं आया है।
इस बीच पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से एक खबर ये भी आ रही है कि पठानकोट हमले को लेकर जो एसआईटी पाकिस्तान में बनाई गई थी उसमें एक ये रिपोर्ट आई है कि मसूद अजहर को उसमें क्लीन चिट दे दी गई है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारियाँ हैं?
पाकिस्तान ने जो एक कमेटी बनाई थी, मालूमात इंफॉर्मेशन शेयर की थी इंडिया ने उसकी जांच के लिए, उसका अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि उसकी फाइंडिंग्स क्या हुई हैं। लेकिन अखबारात में इक्का दुक्का ऐसी इतलात आ रही हैं, ऐसी जानकारी और ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद इस कमेटी ने जो एविडेंस भारत ने दिया है बकौल उसके उसको देखा है और कोई खास उसमें ऐसी ठोस चीज नहीं पाई है जिसकी बुनियाद पर मौलाना मसूद अजहर या दीगर लोगों के खिलाफ कोई पाकिस्तान में कार्रवाई हो सके। लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशंस पाकिस्तान में पब्लिक की हैं और ना ही इंडिया के साथ शेयर की हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी अभी तक खामोश है।
एसआईटी की रिपोर्ट जिसकी आपने बात की कि अनऑफिशियली उसके बारे में जानकारी मीडिया में आ रही है, दूसरा हेडली की गवाही, इन दोनों चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही डायलॉग बहाली होगी, तो उसकी संभावना आप कितनी देखते हैं?
देखिए, इसका तो डिपेंड करता है ना कि पाकिस्तान रद्दअमल किस तरह करता है। गेंद जो है, बॉल जो है, वो पाकिस्तान के कोर्ट में है और देखना ये है कि वो किस तरह का शॉट लगाता है और उस शॉट से इंडिया कितना खुश होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन यही चीजें निकल आई उनमें कि जी इसमें कोई सबूत नहीं है जिस पर हम मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करें, तो फिर जो मुजाकरात का अमल होगा वो यकीनन खतरे में पड़ जाएगा। डेविड हेडली पे भी माजी में भी पाकिस्तान इसकी पुष्टि नहीं की और अब भी अगर वो इसी तरह इनकारी और डिनाइल मोड में रहता है तो उससे भी भारत यकीनन खुश नहीं होगा और उसके भी मनफी असरात जो मुजाकरात का एक सिलसिला और उम्मीद बंधी हुई है उस पर पड़ेगा जरूर।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद। इधर जुबैर अहमद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। जुबैर, जैसा कि अभी हमने हारून रशीद से सुना, डेविड हेडली की गवाही पर पाकिस्तान में ज़्यादा हलचल नहीं है और उससे पहले सरकारी वकील उज्जवल निकम कह रहे थे कि डेविड हेडली ने अभी पूरी कहानी नहीं बताई है।
जब मैं मई के महीने में 2011 में शिकागो में था, उस वक्त डेविड हेडली एक वहाँ भी अमेरिकी हुकूमत का सरकारी गवाह था, उसमें जो अदालत को उसमें बयान दिया था उससे अब तक तो बहुत कम अभी तक उसने जो खुलासा किया है। उज्जवल निकम साहब जो बता रहे हैं छाती ठोक के कि बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें बता चुका था शिकागो की अदालत को, और उस वक्त पाकिस्तान ने भी उन सब इल्जाम को जो है रद्द कर दिया था। और आज जो हेडली साहब बताने की कोशिश अगर करेंगे तो क्या निकल के आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिकागो की अदालत को जो हेडली ने बताया था उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें निकल कर नहीं आई है, जैसे कि पाकिस्तान जैसे कि भारत के खिलाफ उसकी घृणा का कारण क्या था। 1971 की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, उसमें हेडली का ये कहना था कि भारत को वो जिम्मेदार मानता था, उसी वक्त उसको भारत से नफरत हो गई थी और उसकी एक स्कूल को की बिल्डिंग को भी क्षति पहुंची थी जिससे उसको भारत के खिलाफ एक गुस्सा था। इसके अलावा भारत में मुंबई हमलों के बाद भी वो आया था, दिल्ली के डिफेंस कॉलेज में आया था, किस तरह से आया वो अभी तक उसने नहीं बताया है। इसके अलावा मुंबई में किन किन लोगों से मिलता था, जब 7 बार वो 1.5 साल के अंदर 7 बार कोई आता है और कितने लोगों से मिलता है, ये सब शायद अभी खुलासा वो शायद आज करे। इसके अलावा जब उज्जवल निकम तो सरकारी वकील है, जब अबू जिंदल जो इसमें एक अभियुक्त है उसका अगर उसके वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे उसमें हेडली क्या कहेगा, ये सब चीजें अभी आज शायद निकल आज या कल में सामने आए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि 7 बार एक आदमी एक पासपोर्ट पे लगातार 1.5 साल के अंदर कैसे आया और भारत के एक डिफेंस एकेडमी में कैसे अंदर उसको प्रवेश मिला, ये भारत सरकार को देखने की जरूरत है।
कह सकते हैं कि परत दर परत अभी बहुत सारी बातें सामने आना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर अहमद इस जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप। आज 9 फरवरी दिन मंगलवार, वक्त हुआ है 6:47 और आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम में आगे एक पड़ताल छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की और चर्चा आज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले 2020 मुकाबले की। लेकिन पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में आ चुके हैं
जी। आज के अखबारों में भी पहले पन्ने पर डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ी ही खबरें हैं। हिंदुस्तान लिखता है हाफिज से हुक्म लेता था हेडली, तो दैनिक भास्कर का शीर्षक है हेडली का खुलासा, नाव नहीं डूबती तो 2 महीने पहले ही मुंबई को लहूलुहान कर देते। सियाचिन में 6 दिन पहले एक हिमस्खलन हुआ था, भारत के 10 सैनिक वहाँ दब गए थे। चमत्कारिक रूप से एक सैनिक जिंदा वहां पे मिले हैं, आज उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है सियाचिन में चमत्कार, 6 दिन बाद जिंदा मिले सैनिक। कल एक अहम फैसला दिया है भारत की दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने, जिसमें भारत में फ्री बेसिक्स लागू नहीं होगा। इंटरनेट की जो नेट न्यूट्रलिटी की बात चलती रही थी वो बरकरार रहेगी। इसी खबर पर नई दुनिया का शीर्षक है आज़ाद ही रहेगा इंटरनेट, नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई की मोहर। जनसत्ता की एक खबर का जिक्र करूंगा जिसके मुताबिक मुस्लिम संगठनों ने एक सुर में कहा है इस्लामिक स्टेट है आतंकी समूह। कल दिल्ली में भारत के मुस्लिम संगठनों ने एक बैठक की और उसके बाद बयान जारी किया। और दिल्ली की ही एक और खबर, दिल्ली में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। कल भारत के मशहूर शायर निदा फाजली का निधन हो गया था, उन्हीं के बारे में दैनिक भास्कर लिखता है निदा साहब के दिल में मीर, मीरा, तुलसी, रहीम, कबीर सब एक साथ धड़कते थे।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जिसने 2 साल पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी। बाद में रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन कर दी गई, जबकि तब तक बाकी भारत में रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का ही काम दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी इस उपलब्धि का बखान करते नहीं थकते, लेकिन रोजगार गारंटी योजना के 10 साल पूरे होने पर अगर आंकड़ों और तथ्यों को देखें तो कहानी बिल्कुल उलट नजर आती है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के इस सरकारी विज्ञापन के उलट राज्य में इस योजना को लेकर कई सवाल हैं। सवाल काम के दिन को लेकर हैं और मजदूरी के भुगतान को लेकर भी। इसके अलावा देश में सबसे कम मजदूरी को लेकर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं। राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों को देखें तो इस साल राज्य में 3,18,000 परिवारों को 71,00,000 कार्य दिवसों का रोजगार दिया गया, यानी सरकार के 200 दिन के रोजगार की गारंटी के उलट एक परिवार को एक साल में औसतन 22 कार्य दिवसीय रोजगार उपलब्ध करवाया गया। यदि एक परिवार से दो व्यक्ति काम करते हैं तो यह औसत 11 दिन का हो जाता है। राज्य में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में इस पूरी योजना को छत्तीसगढ़ में असफल बताया।
रमन सिंह जी भले ही कितना दावा करे 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन, 150 बढ़ा के 200 दिन, लेकिन जो उनके विज्ञापन की होर्डिंग है उससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल 22 दिन के रोजगार वो उपलब्ध करा रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना के मूल स्वरूप में ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं।
असल में केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई तो लोगों को उम्मीद थी कि राज्य की भाजपा सरकार को अब केंद्र से और अधिक आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना के लिए 2014-15 की केंद्रीय मंजूरी के 2600 करोड़ रुपए में कटौती करते हुए केवल 1307 करोड़ रुपए मंजूर किए। रोजगार गारंटी योजना के बजट में लगभग 55% की इस कटौती ने पूरी योजना की कमर तोड़ दी। हालांकि राज्य के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि राज्य सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिकतम रोजगार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बकाया मजदूरी का है और आज भी करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है। राज्य में आम आदमी पार्टी के संयोजक संकेत ठाकुर कहते हैं,
मनरेगा श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है उनकी मजदूरी का। एक मोहभंग की स्थिति श्रमिकों में बन गई है कि यहाँ पे सरकारी मजदूरी है, पैसे का ठिकाना नहीं, कब मिलेगा। हमने मनरेगा श्रमिक संगठन के नाम से एक नया विंग ही प्रारंभ किया है जिसमें कि जितने भी मनरेगा श्रमिक है हम उनको साथ लेकर उनकी समस्याओं को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं।
मजदूरी भुगतान में देरी के अलावा पूरे देश में सबसे कम मजदूरी को लेकर भी राज्य में मजदूरों के बीच असंतोष है। मजदूर नेता नंद कश्यप का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस योजना में केवल मजदूरों का शोषण ही किया है।
हिंदुस्तान में सारे जो विकसित राज्य हैं वहाँ श्रमिकों को 250 रुपए से ज्यादा मिलता है। यहाँ से जो श्रमिक जाते हैं, केरल जाते हैं वो 400 रुपए पाते हैं, पंजाब जाते हैं वो 350 पाते हैं। यहाँ पे मनरेगा में जो मजदूरी है वो 169 रुपए, वो भी 2015-16 के लिए, उसके पहले तक मनरेगा में 125 रुपए 150 रुपए मिलता।
कश्यप का कहना है कि पूरे देश में रोजगार गारंटी में सबसे कम मजदूरी के कारण ही हर साल लाखों लोग मजदूरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, लेकिन राज्य के श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े इसे सही नहीं मानते।
दलाल लोग ही जा करके गांव में, और वो परिजन लोग ही गड़बड़ करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होशियार है ना, वो जाते हैं गांव में, तुमको हम इतना पैसा देंगे, इतना करवाएंगे, तुमको इतना मिलेगा, ऐसा उनको लालच देते हैं, आके वो लालच में आ जाते हैं गरीब लोग। और बाकी ऐसा कोई पलायन की स्थिति नहीं है।
लेकिन अर्थशास्त्री और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के योजनाकारों में से एक डॉक्टर ज्यां द्रेज इन विवादों से अलग मानते हैं कि इस योजना से देश में मजदूरी भी बढ़ी और महिला सशक्तिकरण भी आया।
2000 से 2006 तक अगर देखें तो उस समय करीब रेलवे का कोई ग्रोथ ही नहीं था। नरेगा आने के बाद थोड़ा सा ग्रोथ होने लगा, मजदूरी बढ़ने लगा, और दूसरा मुझे देखिए जो महिलाएं हैं उनको तो बहुत ही मदद मिला है नरेगा से, क्योंकि महिलाओं को अपना इनकम कमाने का बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है रूरल इंडिया में, खास करके अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, बिहार, यूपी, झारखंड, तो नरेगा इनको चांस दिया है अपना इनकम कमाने का, फिर अपना बैंक अकाउंट खोलने का, ग्राम सभा में भागीदारी लेने का।
हालांकि जहां द्रेज का कहना है कि रोजगार गारंटी के 10 सालों में से पिछले 5 सालों में इस योजना की दिशा और दशा में बदलाव आया है और इसे फिर से पटरी पर लाने की जरूरत है, इसमें कई सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के हालात बता रहे हैं कि राज्य में अभी तो कम से कम इस योजना में सुधार की गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
अमेरिकी जेल में बंद पाकिस्तानी मूल के चरमपंथी डेविड हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की अदालत में हो रही सुनवाई आज भी जारी रहेगी। चिंकारा शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई आज जोधपुर की अदालत में होगी। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर भी आज मुंबई हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सीरिया से भागकर तुर्की में घुसने की कोशिशें कर रहे प्रवासियों के ताजा हालात से भी हम आपको अपडेट कराएंगे। नजर रहेगी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की नामांकन प्रक्रिया पर भी, जिसमें आज उत्तर पूर्वी प्रांत न्यू हैम्पशायर में पहला प्राइमरी मतदान होगा। अमेरिका और थाईलैंड की सेनाएं आज से साझा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू करेंगी। इसे कोबरा गोल्ड नाम दिया गया है। ग्रीस की बैंकों में 20% की गिरावट के साथ वैश्विक बाजारों में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। आज भी हमारी नजरें बाजार पर रहेंगी। और उधर क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका की टीमें T20 मुकाबले में पुणे के मैदान में आमने सामने होंगी।
भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 2020 सीरीज जीतकर घर लौटी भारतीय टीम के हौसले काफी बुलंद हैं। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम की संभावनाओं पर वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव से बात की।
भारत की स्थिति अभी 2020 में बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में उसने अपना प्रदर्शन किया है भारतीय टीम ने, और जिस प्रकार से पुराने और नए चेहरों ने मिलकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए बहुत आसान नहीं होगा भारत को हराना, खासकर तब जब उनके कई नामी गिरामी खिलाड़ी इस बार उनकी टीम में नहीं खेल रहे हैं। न तो लसित मलिंगा हैं, न एंजेलो मैथ्यूज हैं, न कुलशेखरा हैं, और इन सब के बावजूद एक अगर नया नाम कोई था, नया चेहरा था जिसको वो शामिल कर सकते थे, बिनूरा फर्नांडो, वो भी चोटिल हैं, उन्हें भी चोट लगी हुई है। ऐसे में श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल होगा भारत को हराना।
और मल्ल जी, आपको लगता है कि भारतीय चयनकर्ताओं के लिए अंतिम 11 का चुनाव करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं?
बिल्कुल मुश्किल होगी भारत को चुनना कि कैसे चुने उन 11 खिलाड़ियों को। और जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हार्दिक पांड्या और पवन नेगी के बीच चुनना मुश्किल होगा। दोनों ऑलराउंडर की भूमिका में आना चाहते हैं। पांड्या बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी सटीक उनकी नहीं रही है। और दूसरी बात कि कोहली की जगह नंबर 3 पर शायद अजिंक्य रहाणे को खिलाएं कि ना खिलाएं, इसको लेकर भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो इस तरह से समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, और ये बेंच स्ट्रेंथ आगे काम आएगी विश्व कप के दौरान, और इस समय आजमाने का भी मौका मिलेगा भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, भारतीय टीम प्रबंधन को।
आपको लगता है कि एक आध मैच जीतने के बाद शायद भारतीय टीम प्रबंधन कुछ चेंजेस करना चाहे, जैसे पवन नेगी हैं या फिर भुवनेश्वर कुमार?
बिल्कुल, सबको खिलाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कौन किस तरह से वापस फॉर्म में लौट रहा है, क्योंकि जब यहाँ की पिचें वैसी ही होंगी जिस तरह की 2020 विश्व कप में, तो मुझे लगता है कि भारत का टीम प्रबंधन चाहेगा कि हर खिलाड़ी को मौका दिया जाए और हर खिलाड़ी को इसमें देखा जाए कि किस प्रकार से टीम में अपनी जगह पक्की करा सकता है, किस नंबर से खेल सकता है, किस तरह से टीम के संतुलन को बनाया जाए जिसमें हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका हो। तो ये एक मौका है उसको टीम की कमजोरियों को, टीम की मजबूतियों को आंकने का और उसके अनुरूप काम करने का। तो मुझे लगता है कि कोशिश यही होगी महेंद्र सिंह धोनी की कि हर खिलाड़ी को कभी न कभी खिलाकर आजमाया जाए और देखा जाए कि वो किस प्रकार से तैयार है विश्व कप के लिए।
कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
बीबीसी समाचार। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सीरियाई सरकारी सैन्य बलों के एलेप्पो पर हमले जारी हैं। इसी बीच तुर्की ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता युद्ध से बचकर भाग रहे लोगों को सीरिया के भीतर मदद पहुंचाना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सरकार की हिरासत में लिए गए विद्रोही समर्थक बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वह जीका वायरस से निपटने के लिए अमरीकी कांग्रेस से $1.8 अरब की आपात मदद मांगेंगे। सियाचिन में 6 दिन पहले हिमस्खलन में दबे भारतीय सेना का एक जवान जीवित मिला है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। विश्व भारती में ठीक एक घंटे के बाद 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।